Dakota has turned up the frequency. Buses are running more often across Central Ohio. Starting this September, you'll see expanded weekend service on the east and north sides, including the Easton and Polaris corridors. Plus, there are added weekday trips downtown from New Albany, Canal, Winchester, and Tuttle. It's more service, more connections, and more ways to move across the city. Discover the enhanced schedule at coda.com/service changes. That's coda.com/service changes.
वित्तीय संस्थाओं के साथ धोखाधड़ी मामले में आरोपी भारतीय शराब कारोबारी विजय माल्या को कल ब्रिटेन की एक अदालत में पेश किया गया। वो यहां अपने खिलाफ चल रहे प्रत्यार्पण मामले की सुनवाई के सिलसिले में पेश हुए। उनके खिलाफ करीब 9000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और हेराफेरी का आरोप है। सुनवाई के दौरान ब्रिटेन की जस्टिस एमा आबंथनॉट ने कहा कि माल्या के किंगफिशर एयरलाइंस को कर्ज देने में कुछ भारतीय बैंकों ने नियम तोड़े और यह बात बंद आंखों से भी दिखती है। उन्होंने कहा यह साफ है कि बैंकों ने कर्ज मंजूर करने में अपने ही दिशा निर्देशों की अवहेलना की। जस्टिस आबंथनॉट ने भारतीय अधिकारियों को इस मामले में शामिल कुछ बैंक कर्मियों पर लगे आरोपों को समझाने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि यह बात माल्या के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है रेगुलेटरी एजेंसीज पर, जिनमें ईओडब्ल्यू, ईडी, सीबीआई, हाईकोर्ट, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल शामिल है। ये सब विजय माल्या के केस में उतने ही जिम्मेदार हैं। आइए जानते हैं आखिर किंगफिशर को 9000 करोड़ रुपए का लोन मंजूर करने में आईडीबीआई बैंक के पूर्व प्रमुख की क्या भूमिका थी और कैसे नियमों का उल्लंघन किया गया। सीबीआई सूत्रों का दावा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों की अनदेखी की गई और किंगफिशर की खस्ता माली हालत और कमजोर क्रेडिट रेटिंग के बावजूद माल्या को 3 हिस्सों में लोन मंजूर किया गया। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार किंगफिशर ने 1 अक्टूबर 2009 को 750 करोड़ रुपए के कॉर्पोरेट लोन के लिए आईडीबीआई को आवेदन दिया। इस आवेदन के लंबित रहने के दौरान ही माल्या ने 150 करोड़ रुपए के शॉर्ट टर्म लोन की मांग को लेकर 6 अक्टूबर को तत्कालीन आईडीबीआई प्रमुख योगेश अग्रवाल से मुलाकात की। अगले ही दिन किंगफिशर ने आधिकारिक रूप से इस लोन के लिए आवेदन दिया और तत्काल ये मंजूर भी हो गया। 4 नवंबर को एक बार फिर किंगफिशर ने एक अन्य शॉर्ट टर्म लोन के लिए आईडीबीआई को आवेदन दिया, जो कि फिर उसी दिन मंजूर हो गया। विभिन्न बैंकों के 9000 करोड़ रुपए के लोन डिफॉल्ट मामले में कई जांच शुरू होने के बाद विजय माल्या 2 साल पहले अप्रैल में देश से बाहर चले गए थे। इन बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक और देना बैंक सहित कई अन्य बैंक शामिल हैं। बड़े लोगों की कहानी जब बड़े स्तर पर खुलती है तो बड़े बड़े खुलासे होते हैं। फिलहाल विजय माल्या की कहानी भी ऐसी ही नजर आ रही है। बैंकों से मिले लोन के एक बड़े हिस्से को माल्या देश से बाहर ले गए, लेकिन जो कार्रवाई होनी थी वो नहीं हुई। बैंकों के साथ साथ सीबीआई का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है विजय माल्या पर, जो 2 मार्च 2016 में देश छोड़कर भागे थे। वहीं लुकआउट की स्थिति पर उन पे जो नोटिस था उसे भी डाइल्यूट किया गया। जुलाई 2015 से ही यह मामला उठ चुका था कि अगर बैंकों से मिला हुआ कर्ज विदेश गया है, ये पैसा देश से बाहर गया है, तो इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें जिस मुल्क से जांच करने के लिए मदद चाहिए उसे लेटर रोगेटरी भेजना होता है। विजय माल्या देश का पैसा, इतना बड़ा हिस्सा विदेश ले गए, इस बात की जानकारी मिल चुकी थी। दस्तावेजों के मुताबिक सीबीआई के अधिकारियों ने 28 जुलाई 2015 में अपने प्राथमिक जांच में ही कहा था कि इसकी जांच के लिए लेटर रोगेटरी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन लेटर रोगेटरी को 2 साल बाद यानी 3 फरवरी 2017 में यूके को इशू किया गया। हम यहाँ लेटर रेगेटरी की बात बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत अहम तरीका होता है जांच का। अगर आपको किसी मुल्क से उस इंसान के बारे में जानकारी हासिल करनी है जिस पे केस चल रहा है, उसके लिए आपको उस कंट्री को लेटर रोगेटरी इशू करना पड़ता है। ये एक अहम प्रोविजन है, प्रावधान है, जिससे विदेशी जांच के लिए सहयोग मांग सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अबू सलेम का मसला है, जहां ये मसला लिस्बन के हाई कोर्ट में चला। तो आप समझ लीजिए कि विजय माल्या के केस तक अगर आपको पहुंचना है तो लेटर रोगेटरी कितना अहम है। आखिर 2 साल क्यों लगे इस प्रोविजन में? दूसरा अहम सवाल, गवर्नमेंट जुलाई 2015 के बाद क्या कर रही थी? कार्रवाई शुरू क्यों नहीं की गई? विजय माल्या सिर्फ एक चेहरा है, ये बैंकिंग सिस्टम न जाने और कितने माल्यास क्रिएट करेगी। देश के बाहर जो व्यक्ति है वो ज्यादा खतरनाक है या देश के अंदर के वो लोग जिन्होंने उसकी मदद की और आज भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकल कर आ रहा है। देश में लगातार हो रहे बैंक घोटालों के कारण बैंकों का NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ता जा रहा है। अब ये इतना बढ़ गया है कि अगर देश का हर व्यक्ति इसे चुकाना चाहे तो उसे हजारों रुपए देने होंगे। भारतीय बैंकों पर सितंबर 2017 तक NPA या डूबत कर्ज 8.29 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, यानी ये बैंकों द्वारा बांटे गए कर्ज का वो पैसा है जिसकी रिकवरी की संभावना नहीं है। बैंक तो आम आदमी को दिए लोन की आमदनी से चल रहा है, उद्योगों को 4-6% की दर पर लोन मिलता है और आम आदमी को 8-15% तक की दर पर मिलता है। उद्योगों को दिए गए 100 रुपए के कर्ज में 19 रुपए डूब रहे हैं, तो आम आदमी के महज 2 रुपए, वो भी बाद में वसूल लिए जाते हैं। मतलब बैंक व्यवस्था चलाने में योगदान आम जनता दे रही है, लेकिन बैंक हजारों करोड़ों का कर्ज उद्योगपतियों को दे रही है। वो उद्योगपति जो कर्ज लेकर आराम से विदेश भाग रहे हैं, लेकिन बैंक से लेकर सरकार तक कुछ नहीं कर पा रही है। वहीं अगर एक किसान अगर अपना कुछ हजारों का भी कर्ज न चुकाए तो उसके खेत से लेकर घर तक कब्जा कर लिया जाता है। विजय माल्या के इस केस में मिला जुला हिसाब किताब ये है कि आखिर 2 साल क्यों लग गए लेटर रोगेटरी को इश्यू करने में। इस मामले से जुड़े सभी बैंक के अधिकारी आज भी बाहर क्यों हैं? उन पर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आज भी वो खुले घूम रहे हैं, शायद वो उसी बैंक में आज भी काम कर रहे हैं। तीसरा अहम सवाल, अगर उन पे कार्रवाई की भी गई है तो आगे का क्या प्रावधान है? उसकी चर्चा भी आज तक नहीं की गई है। अंत में अहम सवाल बस यही उठता है कि ये बैंकिंग इंडस्ट्री, ये हमारी जिम्मेदार सरकार न जाने और कितने माल्यास और नीरव मोदी को बनाएंगे।
Coda has turned up the frequency. Buses are running more often across Central Ohio. Starting this September, you'll see expanded weekend service on the east and north sides, including the Eastern and Polaris corridors. Plus, there are added weekday trips downtown from New Albany, Canal, Winchester, and Tuttle. It's more service, more connections, and more ways to move across the city. Discover the enhanced schedule at coda.com/service changes. That's coda.com/service changes.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Boy, season's greetings to you all.